अब हम राह रास पारे पे चलते हैं। पारे का मरकजी मजमून मतान हसना और मताउल गुरूर का तकाबुल है। मताउल गुरूर क्या है? मटीरियलिज्म, मादा परस्ती, दुनियावी चीज़ें। और मताए हसन क्या है, जिसका इस पारे में बहुत कसरत से तज़किरा है? जो दुनिया में भी वो जो अल्लाह की रज़ा से मिले, और आखरत में भी वो कि जिसको पाने के बाद एक इंसान परेशान ना हो। पिछले पारे के साथ अगर हम इसका रब जोड़कर देखें तो पारा नंबर 11 में मुश्रिकीन मक्का के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में थोड़े से ऐसे रवैयों की बात थी कि जो तकब्बुर का इजहार करती हैं, और फिर वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इस पारे के बिल्कुल शुरू में ही आप और मैं देखने वाले हैं कि रिज्क अल्लाह के हाथ में। याद रखिए, जब थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आ जाए या थोड़ा सा जाहो मनसब मिल जाए, जो मक्का के अरब सरदारों को अपने ऊपर बहुत मान था कि हम तो इतने बड़े हैं, भाई एक यतीमे मक्का की बातें सुने और इस पे कान रखें, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हम तो इनको इतनी अहमियत नहीं देते। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि वो नबी सल्लम को ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने इस बारे के शुरू में रिस्क की बात करके बता दिया कि तुम ज़्यादा अपने आप को बड़ा ना समझो। रिस्क अगर तुम्हारे पास है तो वो अल्लाह का दिया हुआ है, तुमने खुद ये सारा कुछ नहीं किया। दूसरी बात, इस बारे में आज का बुत मादा है, मटीरियलिज्म है। हम इसमें बहुत तफसील से हज़रत नूह और उनके बेटे का किस्सा पढ़ने वाले हैं। जब हज़रत नूह ने बेटे को कश्ती में पुकारा कि आ जाओ इधर कश्ती में आ जाओ, तो बेटे ने कहा कि मैं या सिमुनी इला जबल, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। पहाड़ क्या था? एक सबब था। मुसब्बबुल असबाब को छोड़कर असबाब के पीछे दौड़ना, ये है इस पूरे पारे का खुलासा, जिसमें आपको तदबीर व मुकाबला तकदीर भी दिखेगी, जिसमें आपको मुश्किलात उरूज का सीना, जब हम सूरत यूसुफ पे आएंगे ना तो वहाँ ये और भी आपको खुल के दिखेगा कि ज़िंदगी में जो मुश्किल हालात आते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि आपके मेरे लिए नुकसान का ही ज़रिया हों, बल्कि ये मुश्किलात हमारे लिए एक जीना, एक सीढ़ी बन जाते हैं खैर तक पहुंचने की। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब कुछ चीज़ों से आजमाया तो उन सारी चीज़ों की आजमाइश में वो पूरे उतरे, और उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको मिस्र की बादशाहत भी दे दी। फिर इसी तरह से इस पारे के अंदर आपको पांच बापों की बात दिखेगी। नबी सल्लम की तो अभी हम कर ही रहे हैं। हज़रत नूह एक बाप के रूप में आपको दिखेंगे, हज़रत इब्राहिम एक बाप के रूप में दिखेंगे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक बाप के रूप में दिखेंगे, और इसी तरह से बीच बीच में आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि आज का पारा मर्दों के सुनने वाला है, क्योंकि औरतों को तो हम बहुत ज़्यादा कई चीज़ों पर परेशान करते भी हैं और समझते हैं अच्छी तरबियत करें, लेकिन बच्चों की तरबियत में बाप का क्या रोल है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत बाप हों या इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहसियत बाप हों, ये याद रखिए कि औलाद आपके लिए एक कीमती दौलत होती है, लेकिन बुरी सोहबतों का शिकार होने पर जब औलाद माँ बाप के लिए सुहाने रू बन जाए तो उस वक़्त फिर क्या तरीका किया जाए, बिगड़ी हुई औलाद से कैसे निपटा जाए, ये सारा कुछ इस बारे में ख़ास तौर पे हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रोशनी में देखेंगे। और आपको मुझे इस बारे से जो सबक दिया जा रहा है, अपनी औलादों को मटीरियलिज़म के आइडल से निकालिए। दे आर मटीरियल वर्शिपर बन चुके हैं, एक मेटा वर्ल्ड में हम दाखिल हो चुके हैं। हर वक्त बच्चों को सेलफोन्स, गाड़ियों, गैजेट्स और इन तरह की बातों में मुलव्वस कर देना, और बचपन से ब्रांड कॉन्शियस कर देना, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी डालना है। तो बच्चों को रूहानी फवायद से आगाह करना है, और आप देखेंगे कि लाइफ टाइम किस्से हैं। इंशाल्लाह जो ही सूरत यूसुफ शुरू होगी तो हम उससे भी कुछ चीज़ें लेंगे, लेकिन साथ साथ नसीहत ली जाने वाली बातें हैं इस बारे में। सूरत हूद में हज़रत नूह की सीरत बिलतरतीब आ रही है। आइए शुरू करते हैं, टेक्स्ट के साथ साथ चलेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरत हूद की आयत नंबर 6 से ये पारा शुरू हो रहा है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं सब की रोज़ियाँ अल्लाह पर हैं, यानी उसके ज़िम्मे हैं, वही इनके रहने सहने की जगह को जानता है और इनके सौंपे जाने की जगह को भी। सब कुछ वाज़ेह किताब में मौजूद है। शुरू में आपको मुझे बता दिया, कोशिश करना तुम्हारा काम है और तुम्हारी कोशिशों के बदले में तुम्हें रिस्क कितना मिलना है, कम मिलना कि ज़्यादा, ये अल्लाह ताला के हाथ में, क्या इसी बात के साथ एकदम बंदे का दिमाग सीधा नहीं होता? चूँकि बापों के नाम ये पारा है, तो यहाँ एक पैगाम नोट कीजिए कि बापों को कमाने में इतना वक्त लगाना चाहिए कि उनके पास अपनी औलाद को देने के लिए वक्त मौजूद रहे, बिलखसूस बेटे। वहुवल्लज़ी खलक़ समावाती वलर्तफ़ी सित्तती अय्याम, अल्लाह ही वो है जिसने 6 दिन में आसमान ज़मीन को पैदा किया और इसका अर्श पानी पर था, ताकि वो तुम्हें आसमाए कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। ये है जी अमलन हसन, अहसन अमल। आपने इस पूरे बारे में लफ्ज़ अहसन या बेहतरीन को नोट करना है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस बारे में क्या खूबसूरती से तकाबुल है मताउल गुरूर और मताए हसना का। क्यों हमें आजमाने के लिए ये सब कुछ करता है? ताकि पता चले कि तुम क्या करते हो। अगर आप इनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे, तो काफिर लोग पलट कर जवाब देंगे कि ये तो निरा साफ साफ जादू ही है। और अगर हम इनसे अजाब को गिनी चुनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल दें, तो ये ज़रूर पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन सी चीज़ रोके हुए है। सुनो, जिस दिन वो इनके पास आएगा, फिर इनसे टलने वाला नहीं, फिर तो जिसकी हंसी वो उड़ा रहे थे वो इन्हें घेर लेगी। वलैनज़क़नल इंसान मिन्ना रहमा, अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चिखा कर फिर इससे ले लें, तो बहुत ही नाउम्मीद और बड़ा ही नाशुकरा बन जाता है, यानी बड़ा थोड़ा दिला है इंसान। और अगर हम इसे कोई मज़ा चखाएं इस सख्ती के बाद जो इसे पहुंच चुकी थी, तो वो कहने लगता है कि बस बुराइयां मुझसे जाती रहीं। यकीनन वो बड़ा इतराने वाला शेखी खोर है। क्या पता चला कि ना तंगी से सबक लेता है और ना आसूदगी से। हाँ, मगर इल्लज़ीना सबरू व अमिलु सालिहाती उलाइक लहुम मग़फ़िरतुन व अजरन कबीर, सिवाय इनके जो सब्र करते हैं और नेक कामों में लगे रहते हैं, इन्हीं लोगों के लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा बदला भी है। क्या पता चला कि दुनियादारी की चीज़ों के पीछे पड़कर सिर्फ हर वक़्त कमाने और सिर्फ हर वक़्त आगे से आगे खर्च करने की फ़िक्र करना, ये भी सब्र के ख़िलाफ़ है। फ़लाअल्लाक तारिकु बादमा यूहा इलैक, अब अल्लाह के नबी को जो वही मिल रही थी उस वही से मुतल्लिक कुछ बातें, बस शायद कि आप इस वही के किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हैं जो आपकी तरफ नाजिल की जाती है, और इससे आपका दिल तंग है सिर्फ इनकी इस बात पर कि इस पर कोई ख़जाना क्यों नहीं उतरा। देखिए मादा परस्ती, या इसके साथ कोई फरिश्ता ही आता, ये भी क्या है कि ज़रा कोई बड़ापन होता, कोई जाहो जलाल होता, बड़े लोगों के साथ कोई अर्दली होते हैं, हटो बच्चों की बातें, ये क्या शख्स अकेला ही उठ के आ जाता है? आप देखिए, अमूमन जो लोग बहुत ही प्रोटोकॉल मांगते हैं ना, उनके आगे पीछे लोग फिर रहे होते हैं। अगर कोई है और उसको खिदमत का मौका आप दे दें, तो इट्स फाइन। अगर कोई नहीं है, तो आप खुद उठ कर आ जाइए, अपना बैग खुद उठा ले। क्या हो गया, आप कोई माजूर है? क्यों हर वक्त लोगों को अपने बारे में कॉन्शियस रखना कि हम बहुत बड़ी चीज़ हैं? तो अल्लाह के नबी में बड़ी सादगी थी, खुद ही काम कर लेते, अपना जूता तक गांठ लेते। बचपन से ये जुमले सुने तो क्या हुआ कि अल्लाह के नबी के बारे में उनका ख्याल था, लगता तो नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा बंदा है। और लिखी आज हुलिया मुबारक, और आपकी पर्सनैलिटी लिए ना, अगर आपको अल्लाह दुनिया में बहुत इज्जत भी दे दे, बहुत माल भी दे दे, बहुत आपका जाहो जलाल भी, आपको देकर बिल्कुल इजी गोइंग पर्सन लगना चाहिए। ये जो वो पंजाबी उर्दू के मिलाकर कहते हैं ना, नौ दौलती है, वो नए कपड़े की तरह अकड़े ही फिरते हैं, 4 पैसे घर में आते हैं चाल बदल जाती है, ये चीज़ अच्छी नहीं होती, ये नकली पर्सनैलिटी होती है। आप बिल्कुल साथ दे रहे। हज़रत उमर ने जब बैतुल मक़दस को फ़तह किया था, उनके जिस्म पे कपड़ों पे पैबंद लगे हुए थे, अल्लाह के नबी खुद फटे को सी लेते थे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये कपड़े जूते जेवर और ये इसी तरह गाड़ियाँ कोठियाँ बंगले, ये कोई इज्जत नहीं है। आप भी जब कभी अपने बच्चों के रिश्तों के लिए लड़का या लड़की देखें, तो देखा करें कि उसमें सादगी कितनी है, नेचुरल कितना है। क्योंकि जो थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा देर कर नहीं सकते। तो कहते थे इसके आज फरिश्ता क्यों नहीं आया? अल्लाह कहते हैं, आओ तुम्हें बताते हैं हम, इन नमान तनसीर, आप तो सिर्फ डराने वाले ही हैं, और हर चीज़ का जिम्मेदार तो अल्लाह ताला है। क्या ये कहते हैं कि इस कुरान को इसी ने घड़ा? ये भी एक इल्ज़ाम था। जवाब दीजिए, फिर तुम भी इसी के मिसल 10 सूरतें घड़ी हुई ले आओ। यानी ये तो उम्मी है, तुम तो बड़े पढ़े लिखे हो, तुम्हारे अंदर तो अदब बहुत है, अदीब हो, शायर हो, तुम जो ले आओ। जब ये कुछ ना पढ़ के इतना कुछ कर सकता है, तो तुम तो पढ़े लिखे हो, और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो अपने साथ बुला लो अगर तुम सच्चे हो। ये दूसरा मुकाम है कुरान में जिसमें चैलेंज किया गया कि कुरान के मुकाबले में कुछ ले आओ। आगे भी आएगा, कुरान पाक में 4-5 मुकामात पे चैलेंज किया गया, उनमें से ये दूसरा मुकाम है। फिर अगर वो तुम्हारी इस बात को कबूल ना करें तो तुम यकीन से जान लो कि ये कुरान अल्लाह ताला के इल्म के साथ उतारा गया है और ये कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। बस क्या तुम मुसलमान होते हो? जवाब दीजिए, फहलन तुम मुस्लिमून, क्या तुम इस कुरान को मानते हो? हमारा भी ये जवाब होना चाहिए, जी अल्लाह ताला, हम इसकी एक एक बात को सुनकर मानने के लिए तैयार हैं। मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ्फी इलैहिमा मा लहुम फीहा। अब यहाँ देखिए तकाबुल है मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी का। जो शख्स दुनिया की ज़िंदगी और इसकी जीनत पर फरेफ्ता हुआ, यानी मरी गया, मर मिटते ना, हाय जान निकल गई मेरी उसकी गाड़ी देख के, हाय उसके कपड़े देखे थे, हाय उनका मेकअप देखा था, उनके जूते देखे थे, ये बातें हैं इधर। अल्लाह कहते हैं वो तो दुनिया की ज़िंदगी पे फरेफ्ता हो गया, हर वक्त दुनिया, हवासों पे दुनिया, और ये जो इस वक्त का दौर चल रहा है ना, ख़ास तौर पे कोविड के बाद का, ये मुझे तो लगता है कि एक पूरे नए सिरे से तैयारी की गई थी लोगों को मटीरियलिस्टिक बनाने की। हर बंदा इस वक्त क्वालिटी कॉन्शियस है कि नहीं, ब्रांड कॉन्शियस। एक होते हैं आपकी पसंद नापसंद, इस फाइन, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक एक अगर ये पर्स मैंने ना पकड़ा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, और ये पहन लिया तब ज़रा लोग देखें, एक डायमंड की रिंग लोग पहन के इशारों से उंगलियां दिखा रहे होते हैं कर करके, देखो मैंने क्या पहना है, और कोई ना देखे तो हिला जुला कर दिखाते हैं, ये क्या बात हुई? कोई जेवर, कोई जूता, कोई कपड़ा पहनकर अगर एक सेकंड के लिए दिल में तकब्बुर आए ना, तो खुदा के लिए उसको उतारिए और लॉकर में रख दे, फिर जब कभी आजी आएगी फिर निकाल के पहन ले, पहनने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस होके और दूसरों को दिखाने और जलाने और कुड़ाने के लिए करना, ये पसंदीदा नहीं है, और आज ये हो रहा है। वो दर्जियों को भी कह देती हैं खवातीन कि ये जो नाम लिखा है ना ब्रांड का, ये ज़रूर अंदर आए, ये मोहर जो है ना, यही तो कीमत है इसकी, टैग्स लगवाए जाते हैं अबायों के साथ जहाँ एक छोटा सा पैच लगा होता है। पहले मैंने एक दफ़ा तो फर्स्ट टाइम किसी सिस्टर को देखा होगा आते जाते, तो मुझे लगा जल गया, कितनी अच्छी बात है इन्होंने इसके ऊपर कोई प्लास्टिक लगा लिया, कुछ किया। फिर दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, यहाँ टैग निकाब होता है ना, तो उसके इधर छोटा सा टैग होता है, क्या बता भाई, सिर्फ दिखाना यह कि किस ब्रांड का अबाया, 6-6, 8-8 सौ, 1000-1000 रियाल का एक अबाया। मैं नहीं कहती पहने ना पहने, मेरी बला से ना, मैं कोई आपको मना कर रही हूँ ना, मैं रुगबत दिला रही, लेकिन ये कॉन्शियसनेस बड़ी अजीब है ना कि ये पहना हुआ है। मैं आप सबको मना करूँगी, यहाँ बैठ के तो आप बहुत ही शरीफ से अच्छे से साफ़ सुथरे लोग हैं, लेकिन मैंने कई जगह देखा है अपने लोगों में भी ब्रांड का नाम पहले लेते, ये किस ब्रांड का है, ये फुलाम पहनी हुई है, ये फुलाम पहनना, भाई क्या मतलब है? देखिए आप उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो आपके मुल्क के सिर्फ 5-10% लोग पहन सकते हैं, तो बाकी 90% का क्या कसूर है? आपको अच्छा लगता है पहनने, मैं नहीं मना कर रही, लेकिन आप ज़रा सोचिए लोग इस चीज़ की कीमत ले रहे हैं आज आपसे। 5 वाली चीज़ 25,000 की बिक रही है, एक सूट 5,000 का साफ सुथरा मिल जाएगा आपको लॉन का, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर ब्रांड और चंद चीज़ें लगाकर प्रोमिनेंट होने के लिए आप उसको 25,000 का लॉन का सूट, कभी आपने सुना 25,000 रुपये का पाकिस्तान में लॉन का सूट बिकता? एक ड्राइवर बाबा और माली बाबे की तनख्वाह 15 से 20 हज़ार है, वो भी कोई बड़े साहूकार होंगे वरना उनको भी खींच खींच के 10,000 रुपये रोकते हैं, तब वो ड्राइवर की बीवी क्या करे बेचारी, और बाजी ने अपने उतरे हुए जोड़े देने भी उन्हीं को, हम कहते हैं नहीं नहीं हम दे देते हैं, तो आप तो अपनी मेट्स को भी ख़राब कर रहे हैं, आपका प्योर सिल्क का सूट है, आप तो उसको थोड़ी तरीके सलीके से पहन के 5-6 दफ़ा पहन लेंगी, वो बेचारी पहन के अगले दिन सफाई करने आएगी, जाके धोएगी, वो तारो तार हो जाएगा। कई लोग कहते हैं नहीं हम अपने गरीब रिश्तेदारों को दे देते हैं, बड़ी कज़न्स है मेरी, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, जिस गरीब रिश्तेदार को 25,000 रुपये का अपना पहना हुआ जोड़ा भी दे रहे हैं, हो सकता है उस गरीब के पास 10,000 अपने कॉलेज स्कूल की फ़ीस ना हो, आप कहते हैं वो भी दे देंगे, यानी कंज्यूमर सोसाइटी है इस वक्त, वो तो ले गया ना जिसने बेचा, वो सिर्फ आपके शौक की कीमत है, वही जोड़ा दुकान बदल कर पीछे से है तो वो कॉटन ही है ना, लागत तो उतनी आती है। तो याद रखिए ये सारी मॉडलिंग का खर्चा, ये सारी दुकानों की पंप एंड शो, इसका खर्चा वो आपसे निकालते हैं, और ये सिर्फ एक सोच है जो इस पारे के साथ अपनी ख़त्म कीजिए। वमा मिन दाबतिन, पहनिए खाइए ओढ़िए अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, और ना किसी की तारीफें किया करें। आपको कोई अच्छा लगे उसको देख के दुआ दे दें, किसी का नया कपड़ा देखे इल्बिस जदीदा निश हमीदन मुझे, लेकिन ऐसे जुमलों से निकले। और एक छोटा सा जब बात हो ही रही है तो किसी को नाफरमानी के हुलिये में देखें, यानी बेपर्दे और खूब एक्सपोजर से शादी में फिर रही है, कभी तारीफ ना करें। मेकअप करवा के आए हैं बेपर्द भी हैं, कभी ना तारीफ़ करें, बड़ा अच्छा मेकअप, दुल्हन की कभी तारीफ़ ना करें अगर स्टेज पे बैठी सारे शहर को दिखा रही है। सिर्फ आप तारीफ़ करना छोड़ दें, 50% दिल तो हॉल में ही टूट जाएंगे। कितनी मेहनत करके आए, इतना जिहाद किया, इतनी हमने स्ट्रगल की, किसी एक ने नहीं कहा अगली दफ़ा दिल ही नहीं करेगा तैयार होने का, छोड़ो, कोई कहता तो है नहीं, सिर्फ कहना छोड़ दें, लोग करना छोड़ देंगे। चलिए आइए फिर आयत पे वापस। मन कान युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम फीहा। जो शख्स दुनिया की ज़िंदगी और इसकी जीनत पर फरेफ्ता हो जाता है, यानी मर मिटता है, हम ऐसों को इनके कुल अमाल का बदला यहीं भरपूर पहुंचा देते हैं और यहाँ इन्हें कोई कमी नहीं की जाती। हाँ, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखरत में सिवाय आग के और कुछ नहीं, और जो कुछ उन्होंने यहाँ किया होगा वहाँ सब इकारत है, और जो कुछ अमाल थे सब बर्बाद होने वाले हैं। यानी जो दिखावे के लिए करता है उसका सब कुछ बाद में ज़ाया हो जाता है। अफ़मन कान अला बैनति मिन रब्बिही, क्या वो शख्स जो अपने रब के पास की दलील पर हो और इसके साथ अल्लाह तआला की तरफ का गवाह हो, और इससे पहले मूसा अलैहि सलाम की किताब गवाह हो जो पेशवा रहमत है, औरों के बराबर हो सकता है? यही लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं, और तमाम फ़िरकों में जो भी इसका मुनकिर हो, इसके आखिरी वादे की जगह जहन्नम है, बस तो इसमें किसी किस्म के शुबे में न रहना, यकीनन ये तेरे रब की जानिब से सरासर बर हक है। लेकिन हाल क्या है, वला किन अक्सर अन्नासि ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं होते। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा। खबरदार हो कि अल्लाह की लानत है जालिमों पर। कौन होते हैं जालिम? नोट करते जाइए। अल्लज़ीन यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि वयबगूनहा इवजा, जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें टेढ़ापन तलाश करते हैं, और तीसरी खूबी बहुम बिलाखिरातिहुम काफिरून, यही लोग आखरत के मुनकिर हैं। क्या पता चला तदब्बुर और अमल की बातें? अल्लाह ताला पर भरोसा करके हसूल रिस्क के लिए जायज़ ज़रिया इख्तियार कीजिए, क्योंकि सबब आपके इख्तियार में है लेकिन रिस्क अल्लाह के इख्तियार में, इसको समझ लीजिएगा। एक शख्स के नसीब में है कि अल्लाह ने उसको इस महीने में 10,000 रियाल देने हैं। अब अल्लाह ने उसको देने हैं, वो हलाल से ले ले या हराम से ले ले, ये उसकी चॉइस है। हज़रत अली वाला वाक़ आपने कई दफ़ा सुना है कि एक ज़रा लेकर जा रहे थे, कज़ाए हाजत के लिए रुके, तो एक शख्स को कहा ज़रा इसको थोड़ी देर संभालते हो, मैं आता हूँ। कहा ठीक है, जाइए। सोच रहे हैं कि वापस आऊँगा तो इसको 4 दिरहम दे दूँगा, ऐसे ही मेरी इसने मदद की, मैं इसकी कर दूँ। जब वापस आए तो वो शख्स वहाँ नहीं था। करीब एक दुकान से पूछा, इधर कोई बंदा, कोई कुछ, कोई ज़रा थी? कहेंगे हाँ, एक शख्स मेरे पास एक ज़रा बेच के गया। देखी तो इन्हीं की ज़रा थी। कहा कितने की बेच के गया? कहा 4 दिरहम की। क्योंकि मालूम मुफ दिले बेरहम, जैसे आज हम पढ़ेंगे हज़रत यूसुफ़ को भी बेकार समझ कर सस्ता सा बेच दिया गया। कहने लगे इतने तो मैं भी उसको दे ही देता, लेकिन वो उसके लिए हलाल होते, ये हराम है। तो अपने मर्दों को ये पैगाम दीजिए, और कभी खुदारा अपने मर्दों को मजबूर ना करें इतने खर्चे आपके कि वो हराम कमाने पे मायल हो जाएं। ये भी औरतों के लिए सबक है, क्योंकि मर्द कहते हैं क्या करें, गले में फांसी लगा के मर जाएं, क्या करें, फिर तकाजे तो पूरे करने। तो एक अच्छी बीवी खदीजा जैसी अपना माल नबी को दे दें, दे दिया नबी को। क्यों? इसलिए कि ख़वातीन की जितनी ज़रूरियात होती हैं ना, अगर वो अपने पास मौजूद माल के 15-20% में पूरी कर लें और बाकी चीज़ें छोड़ दें आगे अल्लाह के रस्तों में, और शोहरों को कहें कि आप आसानी रखिए, आप थोड़ा सीखिए, पढ़िए, आप कोई काम कर लें, कभी मौका है तो जिहाद पे चले जाएं, हम गुजारा कर लेंगे, तो इंशाल्लाह उन घरों में ज़्यादा सुकून है। 80-90% झगड़े लड़ाइयाँ हमारे घरों में पैसे की वजह से होते हैं। मर्दों की बेचारों की औकात नहीं है और औरतें मांग रही हैं, या वो देना नहीं चाहते, मर्द भी कभी कंजूस होते हैं तो औरतें कहती हैं क्या करें, पैसा पैसा पैसा। मुझे इस हुकूमत मुस्लिमा को देख ऐसे लगता है कि हमारा जो फोकल पॉइंट है, जो विच है ना, वो मनी बन चुका है। ये पारा आपको यही सिखा रहा है कि इससे ज़रा निकलिए। अगर दुनिया की किसी नेमत का ना मिलना आपको बेचैन रखता है तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें। देखिए, बीइंग अ ह्यूमन, आपके दिल में ख्याल आ सकता है, अच्छा सूट देख सकते हैं, दिल में आ सकता है, कोई चीज़ बाज़ार में देख ली, आ सकता है, अगर औकात है, हिम्मत है, ले ले, नहीं तो अल्लाह से चुपके से कह दिया, अगर अल्लाह ताला ये मेरे लिए बुक कर दीजिए, जब पैसे होंगे आके ले जाऊँगी। कौन से पैसे? नेकियों के पैसे। आखिरत में आपको इतना प्यारा वो पैक किया हुआ जोड़ा मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगी। बल्कि अच्छा है कि वहाँ तो आपने रहना भी है, जहाँ बंदे ने रहना होता है उसको वहाँ चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जहाँ से गुजरना होता है वहाँ तो हाथ का सामान भी बुरा लगता है। तो हमेशा अपनी नेमतों को आगे से आगे आगे मूव करिए, यानी मताए गुरूर को मताए हसन हमें बदल दीजिए। फिर घर से निकलते वक्त की दुआओं में से एक बड़ी प्यारी दुआ है जो आज आपने मैंने अपने लिए अमल के लिए लेनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आउसु बिका नदिल्ला औ उदल्ला औ अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहला औ युजहला अलैहि। मसनून दुआ है, अल्लाह के नबी ने घर से निकलते ही जो बाहर के फितने आजमाइशों से बचाने के लिए ये दुआ बताई, तो आपने मैंने इंशाल्लाह इसको याद भी करना है और फिर मांगनी भी है। कुरान पाक से रहनुमाई, अल्लाह ताला के नज़दीक बंदे की कीमत इसके नेक अमल की बिना पर होती है, ना कि मालदारी की बिना पे। क्या हमारा भी यही मेयार है? हम बंदे की कीमत उसके माल से लगाते हैं या उसके आमाल से लगाते हैं? जिन शरई मसाइल के बारे में इल्म ना हो इनके बारे में खामोश रहिए। ज़रूरी नहीं कि हर मसले का आप ही जवाब दें, बहुत सारे लोग हैं, किसी और से लोग पूछ लेंगे। गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म ना करें और दूसरों को गुमराह करके इन पर जुल्म ना करें। ये जुमला दो दफ़ा लिखिए एटलीस्ट अपने नोट्स में। गौर व फिक्र के गोशे, अल्लाह से मगफरत और बख्शिश ही बंदे का असल मकसद है, जबकि तौबा इसका ज़रिया है। सिर्फ तौबा तौबा कहना भी कोई बात नहीं होती। हर वो अमल जो खालिस अल्लाह तआला के लिए और रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक ना हो वो बेकार और बातिल हो जाएगा। कुरान का एजाज़ है कि इस जैसा कलाम पेश करना किसी के बस में नहीं। अल्लाह ने चैलेंज दिया, अभी हम आयत पढ़ के आए हैं। जिस शख्स को अल्लाह ने हक़ की हिदायत दी हो, इस शख्स जैसा कैसे हो सकता है जो गुमराही और जहालत में डूबा हो? तो हमेशा जहालत से पनाह मांगिए। आगे आयत नंबर 20 से ऑनवर्ड, ओलाए कलम यकून मोजी न फिल अर्थ। ना ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सके और ना इनका कोई हिमायती अल्लाह के सिवा हुआ। इनके लिए अजाब दुगना किया जाएगा, ना ये सुनने की ताकत रखते थे और ना देखते ही थे। यही है जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया और वो सब कुछ इनसे खो गया जो उन्होंने घर रखा था। बेशक ये लोग आखिरत में नुकसान पाने वाले होंगे। इसके बरक्स इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वअख्बतू इला रब्बिहिम। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी नेक किए और अपने पालने वाले की तरफ झुकते रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं जहाँ वो हमेशा ही रहने वाले हैं। यहाँ अख़बतू को नोट कीजिए, ये है इस बारे में अख़बात, कोयलों का बुझना, आजिज़ी, डाउन टू अर्थ, पुराना कपड़ा पहन कर भी खुश रहने वाले, किसी का भी पहन कर मुतमईन रहने वाले, ये मुखबित, यानी आजिज़ मिजाज, अकड़ वाले नहीं, बहुत फैल फैल कर दिखाने वाले नहीं। अल्लाह हमारे अंदर इख़बात डाल दे। मसलुल फरीकैन कल आमा वल असम, इन दोनों फ़िरकों की मिसाल अंधे बहरे और देखने सुनने वाली जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हैं? बराबर होता है अंधा और देखने वाला, नहीं ना? इसी तरह सुनने और ना सुनने वाला, क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? इस्तियारा है इसमें उन लोगों की तरफ कि जो नसीहत नहीं लेते, और जो लेते हैं उनके अंदर क्या फ़र्क है। तो ये एक तमहीद थी इस पारे के शुरू में। अब आगे से हज़रत नूह से शुरू होकर दोबारा कुछ अंबिया कराम के किस्से, और यहाँ नोट कर लीजिए कि हज़रत नूह का किस्सा डिटेल से है, बहुत प्यारा इमोशनल किस्सा। यहाँ दुआ करूँगी कि औलादों के गमों से माँ बाप को अल्लाह बचाए। हमने अपनी औलादों को अगर वाकई मटीरियलिज़म का ग़ुलाम बना दिया, मेटा वर्ल्ड में डाल दिया, तो अल्लाह ताला हमें अब उनको आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के कलाम और नबी के फरमान से जोड़कर दोबारा प्यार और मोहब्बत के साथ अपनी तरफ लाने वाला बना दे। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमी, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा और कहा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ कि तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो। मुझे तो तुम पर एक दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ है। उसकी कौम के काफिर सरदारों ने जवाब दिया, हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं। नोट कीजिए एटीट्यूड, ये है मतान गरूर, यानी उनको अच्छा नहीं लगता था कि एक शख्स जिसके कपड़ों पे पैबंद लगे हैं वो हमें कुछ कहे और हम उसकी बात मान लें। और तेरे ताबेदारों को भी हम सरसरी नज़र में देखते हैं, सिवाय के अदना दर्जे वालों और मोटी अकल वालों के और कोई नहीं। है एटीट्यूड इसमें, गरीब बेचारे, अच्छा वो मिस्कीन, वही आते हैं बस आपके पास, कोई बड़ा पैसे वाला, कोई ओहदे वाला तो नहीं आता दिखता हमें। आज कई दफ़ा दीन के नाम पे ब्रांड बन चुके हैं, आपको पता, यानी मामाज एंड मेड्स आर नॉट अलाउड। नहीं, ये सब के लिए नहीं है, ये भी एटीट्यूड है आज। पीसी में क्लास हो तो अब वहाँ कोई काले बुरके में और पसीनों में डूबी भी औरत आ जाए, ये कैसे होता है? अब मुझे बताइए कि जब ये सोच रखकर कोई बात करेगा, इसमें एक तो ये ना कि उस तरह के लोग आते हैं, चले और बात है, हम तो किसी को जज नहीं करते, अल्लाह जाने उनके हालात देखे, अल्लाह ने सबको सिखाना है ना, अल्लाह अमीरों से इम्प्रेस है ना गरीबों से कोई प्रेजरिस है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ कि ना आपके दिल में कोई कॉम्प्लेक्स आए कि अच्छा अब हम तो ऐसे लोग नहीं तो अब हम कैसे जाएँ वहाँ कैसे जाएँ। तो अल्लाह ताला के नबियों को भी लोगों ने इसी क्राइटेरियन पर परखा था कि इनके पास किस किस्म के लोग आते हैं। कहने लगे हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बर्तरी अपने ऊपर नहीं देख रहे, यानी हम ही जैसे हो बस, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। अगर गिनते जाए ना तो हजरत नूह को कितने इल्ज़ाम दे रहे हैं। इधर से सीखे कि इस रस्ते में जो ज़ात पे इल्ज़ाम लगते हैं अगर इनको देख कर काम छोड़ेंगे तो फिर आप हजरत नूह की सुन्नत पे तो बिल्कुल भी अमल नहीं करें। और यही हाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रहा था, हर दौर में लोगों ने हक वालों के किरदार को बुरा कहा। अब जो कर रहे होते हैं ना वो खुद बुरे नहीं होते, शैतान अपने कारिंदों के जरिए चीले चांटों के जरिए लोगों के दिलों में गलत फहमियाँ डाल देता है। तो मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भी शैतान कई दफ़ा बुरे काम ले लेता है और उनको पता भी नहीं होता। और याद रखिए हमेशा लोग बेदीनी के नाम पे भी ये बातें नहीं कर रहे होते, कई दफ़ा दीन के नाम पे भी शैतान ऐसे उल्टे सीधे काम करवा लेता है जो बिल्कुल बेदीन काम होते हैं। तो हजरत नूह के लिए दिल में मोहब्बत महसूस कीजिए, कौम क्या कह रही है। और नूह का जवाब देखिए, قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي, इतमाद तो दलील का होता है। हजरत नूह ने कहा मेरी कौम वालों मुझे बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे इसने अपने पास की कोई रहमत अता की हो फिर वो तुम्हारी निगाहों में ना आई हो तो क्या ज़बरदस्ती इसे तुम्हारे गले मंड दूँ हालांकि तुम इससे बेजार हो। इससे पता चलता है कि जो हिदायत लेने के लिए नहीं आता उसको हिदायत नहीं दी जा सकती चाहे वक्त का नबी भी आ जाए। मेरी कौम वालों अंदाज़ देखिए, या कौमी मोहब्बत के साथ पुकारी, ये नहीं कहा कि जाओ भाड़ में तुम मेरे खिलाफ़ हो नहीं तो ना सही ना, या कौमी मैं तुमसे इस पर कोई माल भी नहीं मांगता। ये भी एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता होता है, कोई फीस नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई खुर्जाना नहीं, कुछ नहीं, मैं तो तुमसे कुछ मांगता नहीं तो कहाँ से मिलता है? इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा सवाब तो सिर्फ़ अल्लाह के हाँ है ना, मैं ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, यानी अब तुम्हारे कहने पे अब मैं गरीब लोगों को तो यहाँ से नहीं निकाल सकता, मुतालबे करते थे। ये बिलाल क्यों आते हैं, ये अब्दुल्ला बिन मसूद तो ऐसी बकरियाँ चराते हैं, इनके कपड़ों से तो हमें बू आती है, ये एटीट्यूड था वाकई उस दौर में उनका भी। अल्लाह ने उसी पर लाइफ टाइम आयतें उतार के भेज दी कि नबी आप छोड़ दीजिए कोई भी नहीं आएगा, इन्होंने फिर भी नहीं आना, आप इनकी सारी बातें मान के जैसे आज की ज़ुबान में पीसी में भी इनको बुला लेंगे, इन्होंने फिर भी कोई नहीं आना क्योंकि तलब नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं आप इन लोगों को क्यों निकालते हैं, जो इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, इन्हें अपने रब से मिलना है लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूँ तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है, क्या तुम कुछ भी नसीहत नहीं पकड़ते? आपको दिलसोजी दिख रही है इनके अंदाज़ में, मोहब्बत भी और एक दिल सोजी का अंदाज़ भी है। वला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, यानी मैंने कब को बड़े बड़े दावे किए हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है और तुम्हें अब नहीं मिल रहा तो तुम परेशान हो रहे हो। मैं तो गैब का इल्म भी नहीं रखता, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें इस जिल्लत से पड़ रही हैं इन्हें अल्लाह ताला कोई नेमत देगा ही नहीं, इनके दिल में जो है इसे अल्लाह ही खूब जानता है, अगर मैं ऐसी कोई बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार ज़ालिमों में हो जाएगा। क्या पता चला कि दीन के लिए आने वालों की कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और दूसरे लोगों के कहने पे उनको वहाँ आने से नहीं रोकना चाहिए। अब ज़रा कौम का जवाब सुनिए, नूह का तरीका क्या था और अब कौम का देखिए कितना इल्ज़ामी अंदाज है। कालू या नूहू, पहले तो देखिए अंदाज देखिए नबी का नाम ले रहे हैं। कौम के लोगों ने कहा ए नूह तूने हमसे बहस कर ली और खूब बहस कर ली, कोई आपको हजरत नूह की बहस दिखी है? नहीं, बहस नहीं थी, लेकिन आज भी लोग दीनदार की ज़रा सी बात सुनकर कहते हैं अच्छा बस अपनी बहस बंद रखो, बस ज़्यादा बोलो नहीं, ज़ुबान बहुत खुल गई तुम्हारी, क्योंकि अंदर एक गिल्ट होता है ना। तो कहने लगे हम बहुत बहस कर ली, अब तो जिस चीज़ से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले, अगर तू सच्चों में क्या अजाब लेके आ। देखिए इनकी नासमझी की हद, जवाब दिया कि इसे भी अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहे, और हाँ तुम इसे हराने वाले नहीं हो, तुम्हें मेरी खैर ख्वाही कुछ भी नफ़ा नहीं दे सकती, गो मैं कितनी ही तुम्हारी खैर ख्वाही क्यों ना चाहूँ। क्या दर्द है इसमें, हाँ मगर इन कान अल्लाह युरीदु अन युग़वियकुम, बशर्ते कि अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करने का हो, वही तुम सब का परवरदिगार है और उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या ये कहते हैं कि इसे खुद इसी ने घड़ लिया है? तो जवाब दे कि अगर मैंने इसे घड़ लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं इस गुनाह से बरी हूँ जो तुम कर रहे हो। ये होता है बेलौस बंदा, उसको किसी से कोई लालच नहीं है और ना किसी का कोई डर है। जब लिया नहीं कुछ, दिया नहीं कुछ, तो फिर आप जो मर्ज़ी कहते रहे। अब जब कौम ने हज़रत नूह के साथ मुँह मारी कर ली, हुज्जत तमाम हो गई, और ये हुज्जत तमाम होने का एक वक्त होता है, तो अब क्या हुआ? ये आयत नोट कीजिए 36, इसमें अब इतमाम हुज्जत के बाद अल्लाह की तरफ से अज़ाब की धमकी। वौहिया इला नूह अन्नहु लन युमिना मिन कौमिक इल्ला मन कद आमन, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई कि तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके इनके सिवा और कोई अब ईमान लाएगा ही नहीं, बस तो इनके कामों पर गमगीन ना हो। बस नैल फुल्का भी आयुनी ना, और एक कश्ती हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से तैयार कर, और जालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत ना कर, वो पानी में डुबो दिए जाने वाले हैं। खुशी हुई होगी हजरत नूह को ये सुनकर कि आपकी सारी कौम अभी डूबने वाली है। देखिए चुटलाने वाले थे, लेकिन अपने ही थे ना, जिनके बीच में बंदा उठता बैठता, कोई मिलने वाला, कोई जानने वाला, कोई हमसाया, कोई करीब का रिश्ता, कोई दूर का। हजरत नूह को कितना सदमा पहुंचा होगा इस खबर पे कि अब ये सारे मर जाएंगे। कोई आपको कह, अल्लाह रहम करे कि अगले हफ्ते कोई ऐसी वबा नहीं, आपके इर्द गिर्द वाले सारे फौत हो जाएंगे, तो ये सदमे थे। दीनदार किसी को भी चाहे बोलझे, चाहे उसको सताए, दुख दे, उसको दुखी नहीं देखना चाहता। बद्दुआ नहीं दे सकता कि अल्लाह इसको पकड़ ले, फिर भी अल्लाह पकड़ लेता है, ये भी याद रखिए। वो ना भी बद्दुआ दे ना, आँख निकल जाती है। इसलिए कभी किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती ना कीजिए। गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बर की बातें हैं, दूसरों को भले तरीके से नेक कामों की नसीहत और बुरे कामों से मना कीजिए। हम क्या करते हैं? दूसरों को बुरे तरीके से नेक कामों की नसीहत करते हैं और बुरे तरीके से बुरे कामों से रोकते हैं, ये ना कीजिए। अजर और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान को कुरान पाक की चंद छोटी छोटी सूरतें ही याद करवा दें। खैर के काम करने वाले किसी गिरोह से बग़ैर उजरत लिए तावन कीजिए और वो आपका अजर अल्लाह के ज़िम्मे होगा। कुरान पाक से रहनुमाई, दूसरों को गुमराह करना अजाब में इजाफे का सबब है, चुनाचे गुनाह की तरफ कभी किसी की रहनुमाई ना कीजिए। जिसे आप दावत दे रहे हैं, इसकी सोशल यानी समाजी या माली यानी इकोनॉमिकल हालत देखते हुए इसे हकीर न समझें। यानी छोटे बड़े का कोई फर्क, कोई क्लास सिस्टम नहीं है दीन में। एक ही सब में खड़े हो गए सब महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। कमज़ोरों का ख़ास ख्याल रखना अल्लाह की मदद, हसूल रिस्क और हिफाजत का बड़ा सबब है। गौर व फिक्र की चंद बातें, अल्लाह की बारगाह में मुसलसल आजिज़ी इख्तियार करना और इसकी तरफ मुतवज्जह रहना इख़बात है। खुद से पूछिए कि मैं मुखबता हूँ? आखरत की अजीम नेमतों की बजाय दुनिया लेकर अक्सरीन यानी सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वालों में शामिल नहीं होना। दाई का ये हक नहीं है कि वो अपनी दावत से गरीबों और मोहताजों को दूर रखे। ना हक बात को हक साबित करने के लिए झगड़ा करना काबिले मुज़म्मत है, और ऐसा करने वाला दुनिया और आखरत में मलामत का हकदार होगा। अल्लाह ताला हमारे रवैयों को दुरुस्त कर दे। आज रवैये दुरुस्त हो जाएं, कितनी बातें इसी से आसान होंगी। सूरत हूद की नायात में हम हज़रत नूह की ज़िंदगी के वाक़यात को बिल तरतीब देखेंगे, चंद इशारों के नायों के अंदर। वयस्नुल फुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि मलौ मिन क़ौमिही सख़िरू मिन्हु, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे, इनकी कौम के जो सरदार इनके पास से गुजरते वो इनका मजाक उड़ाते, वो कहते अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम हम पर हंसते हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो इसे रुसवा करे और इस पर हमेशगी की सजा उतरे। यहाँ तक जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तन्नूर उबलने लगा, हमने कहा कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े यानी दो जानवर, एक नर और एक मादा को सवार करा ले, और अपने घर के लोगों को भी सिवाय इनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। इनके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। इसको हाईलाइट करें, ये जो हेड काउंट है ना आज हमारे दिमागों में, उसको नोट कीजिए। मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने क्लास शुरू की, मैंने दौरे कुरान शुरू किया, फिर लोग ही नहीं आए। बस दो चार आंटियाँ ही आती थी, फिर मैंने क्लास छोड़ दी। ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह।